ఓం శాంతి. జబ్ భీ హమ్ బ్రాహ్మణ బచ్చే బ్రహ్మా బాబా కీ కోయి బాత్ సునతే హై అథవా సాకార్ బాబా కా ధ్యాన్ కర్తే హై, ఉన్నే స్మృతి మే లాతే హై, తో ఏక ఐసీ ఛవి హమ్ సబ్ కే సామనే ఆ జాతీ హై జో బహుత్ హీ దివ్యతా సే భర్పూర్ ఏక ఐసా వ్యక్తిత్వ పూరే సృష్టి చక్ర కే అందర్ ఏక హీ ఆత్మా ఐసీ జిస్నే అభీ తక్ కర్మాతీత అవస్థా కో ప్రాప్త్ కియా ఔర్ జీవన్ మే హమ్ సభీ సఫలతా తో చాతే హీ హై, ఉన్నతి చాతే హై, అప్నా లక్ష్య ప్రాప్త్ కర్నా చాతే హై, జో బాబా నే హమ్ బచ్చో కో దియా హై కి అవ్యక్త ఫరిష్తా బన్నా కర్మాతీత అవస్థా కో ప్రాప్త్ కర్కే మాలా కా మణకా బన్నా విజయీ రతన్ బన్నా. తో జబ్ భీ హమారా లక్ష్య హమారీ స్మృతి మే ఆతా హై తో సాథ్ హీ సాథ్ సాకార్ బ్రహ్మా బాబా కీ ఛవి భీ మన్ మే ఆ జాతీ హై. ఏక ఐసా వ్యక్తిత్వ దివ్యతా సే భరా హువా హమే యాద్ ఆతా హై కి జబ్ భీ బాబా సే హమ్ లోగ్ మిల్తే థే బస్ బాబా కే వ్యక్తిత్వ మే ఇత్నా మ్యాగ్నెటిక్ పుల్ థా, చుంబకీయ ఆకర్షణ థా, బస్ బాబా సే మిల్తే థే, బాబా ఐసే బాహే ఫైలా దేతే థే, ఆవో బచ్చే, ఆవో మీఠే బచ్చే, ఆవో స్వీట్ చిల్డ్రన్, ఔర్ హమ్ సబ్ లోగ్ జైసే చుంబక్ కీ తరహ ఖిచ్తే హువే బాబా కీ బాహ మే సమా జాతే థే. ఇత్నా ఆకర్షణ థా, యే కోయి దేహ కీ బాత్ నహీ, లేకిన్ ఉస్ ఆత్మా కే అందర్ ఇత్నా ఖిచావ్, ఔర్ ఉస్కా కారణ క్యా, క్యోంకి జో ఆత్మా జైసీ హోతీ హై, బాబా నే భీ బతాయా హై, చుంబక్ కీ తరఫ్ భీ వోహీ సుయీ ఖిచ్ సక్తీ హై, కౌన్సీ, జిస్ పర్ జంక్ నహీ హోగా, అగర్ జంక్ లగీ హుయీ హోగీ తో వో తో ఖిచ్ నహీ సక్తీ. ఔర్ బాబా కా ఆకర్షణ ఐసా కి జైసే హీ బాబా వహాన్ ఫైలాతే థే హమ్ లోగ్ బాబా కీ బాహ మే ఆ జాతే థే, ఔర్ సబ్సే బడీ బాత్ యే విదేహీ హో జాతే థే, అశరీరీ హో జాతే థే. అభీ తో హమే ఉస్ అవస్థా కో ప్రాప్త్ కర్నే కే లియే మెహనత్ కర్నీ పడతీ హై, లేకిన్ బాబా కా స్పర్శ, బాబా కా ఐసా ఔరా, లైట్ కా తాజ్, బాబా కే వైబ్రేషన్ ఇత్నే జ్యాదా శక్తిశాలీ థే, ఔర్ ఉస్కా కారణ క్యా, క్యోంకి బాబా నే యే అభ్యాస్ కో ఇత్నా పక్కా కర్ లియా థా కి మే ఆత్మా హూ, ఔర్ జిస్కో భీ బాబా దేఖతే థే ఉస్కో ఆత్మిక రూప్ మే హీ దేఖతే థే. ఆప్ సబ్నే పడా హోగా బాబా కీ జీవన్ కహానీ మే, బాబా నే లిఖ లిఖ కే పక్కా కియా థా, మే ఆత్మా హూ, జశోదా ఆత్మా హై, నిర్మలా ఆత్మా హై, ఔర్ సబ్కా నామ్ లిఖ లిఖ కే, లౌకిక పత్నీ కా, బచ్చీ కా, బచ్చే కా, క్యోంకి వ్యక్తి కీ బుద్ధి వహీ జాతీ హై. ఇస్ కారణ సే బాబా కో యే ఇత్నా పక్కా హో గయా థా కి జైసీ బాబా కిసీ కో దేఖతా థా, దృష్టి దేతా థా, తురంత వో విదేహీ హో జాతే థే. తో ఏక తో అగర్ హమ్ సబ్ కా లక్ష్య భీ కర్మాతీత బన్నే కా తో హై హై, ఏక తో హమ్ యే అప్నే మే చెక్ కర్తే చలే కి జో బాబా నే యే వాస్తవ మే పురుషార్థ కియా వో మేరా భీ పురుషార్థ హై యా కేవల్ సున్నే తక్ హీ హై కి మురళీ మే రోజ్ సునతే హై తుమ్ ఆత్మా హో, అప్నే కో ఆత్మా సమ్జో, సబ్కో భాయి భాయి కీ దృష్టి సే దేఖో, मुरली में सुनते तो हैं, लेकिन वास्तव में हम कितना ये अभ्यास करते हैं, और जितना हमारा अभ्यास ये पक्का होगा उतना हम दूसरी आत्माओं को भी विदेही स्थिति का, आत्माभिमानी स्थिति का अनुभव करा सकेंगे। अंत में यही पुरुषार्थ काम में आना है। बहुत आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी और बस आते ही देह से वो न्यारे हो जाए, हमें हमारा शरीर उन्हें हमारा दिखाई न दे, कोई कभी, बस सब आत्मा है, अव्यक्त फरिश्ते हैं, अलौकिक स्थिति, बस वो ही दिखाई दे। और ये तभी होगा जब बाबा की तरह एक ये पुरुषार्थ किया होगा। दूसरा बाबा का पुरुषार्थ जो पक्का किया था वो कौन सा था, जो बाबा ने हम सब बच्चों को भी पिछले 2-3 वर्षों से खास होमवर्क दिया है, कौन सा कार्य दिया हुआ है? बाबा हमेशा कहता है अपनी सूक्ष्म कर्मेंद्रियों की दरबार लगाओ। कौन सी है सूक्ष्म कर्मेंद्रिया? बाबा ने कहा है मन, बुद्धि, संस्कार, इनकी दरबार लगाओ। भक्ति मार्ग में तो हम कह देते हैं, कहते आए क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है, और हम चाहते तो नहीं गुस्सा करना, गुस्सा आ जाता है, और सारा दोष जैसे कि हम दूसरों पर, मन पर दे देते हैं और हम छूट जाते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा है मन बुद्धि की दरबार लगाओ। कैसे दरबार लगाई जाती है? बहुत अच्छी बाबा ने विधि बताई। कई वर्ष पहले बाबा के साथ एक भाई जो शुरू में इससे यज्ञ में दादा आनंद किशोर जी थे, तो उन्होंने हम लोगों को एक पत्र दिया था जो बाबा ने शुरू में ही 1936 में अपने मन को पत्र लिखा, मन को और बुद्धि को, वो मैं उसका आपको सुनाता हूं। कि सबका यह अनुभव होता है मन भाग जाता है, टिकता नहीं है, बाबा का भी यही था। जब भी प्रभु स्मृति में बैठते थे, भक्ति मार्ग में भी 1936 से पहले भी मन भाग जाता था, और फिर जब ज्ञान में आए और जब पता चला भाई आप आत्मा हैं और आत्मा का ही एक अंग मन है, एक बुद्धि है, एक संस्कार है, तो बाबा ने क्या किया, अपने मन को पत्र लिखा। कैसे पत्र लिखते हैं गौर से सुनना। बाबा ने मन को लिखा, हे मन, मैं आत्मा राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, लेकिन तू बलशाली हो गया और तूने मुझ आत्मा राजा को कमजोर कर दिया, लेकिन हे मन, अब मैं तुझे बता देता हूं कि अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। अभी तक तो मैं तेरे कहने पर तेरे पीछे पीछे भागता रहा, चलता रहा, लेकिन अब तुझे मेरे कहने पर चलना होगा। क्यों? क्योंकि मैं आत्मा राजा अपनी स्वस्थिति में स्थित हो गया हूं, मैं अब कमजोर नहीं हूं, मैं राजा हूं, तू मेरा मंत्री है, तुझे मेरी बात माननी है। और ऐसा कहके बाबा ने अपने स्वमान की सीट पर स्थित होके मन को पत्र लिखा, मन को ऑर्डर किया। भक्ति में तो हम कह देते क्या करें, मन बहुत बलशाली है, चंचल है, भाग जाता है, कह के छोड़ देते हैं, लेकिन बाबा ने जब ये ज्ञान को रियलाइज किया कि मैं राजा हूं और मन मंत्री मेरा कर्मचारी है, उसको मेरी बात माननी है, तो बाबा ने उसे ऑर्डर दिया अपने स्वमान की सीट पर स्थित होके। तो यही अभी हम बच्चों को भी करना है, लौकिक में भी जब कोई ऑफिसर होता है और जब अपनी सीट पर होता है, पोजीशन में होता है, किसी को ऑर्डर करता है, सब उसकी बात मानते हैं, लेकिन अगर वो अपनी सीट पर ना हो, रिटायर हो जाए या दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए, और तब वो कोई ऑर्डर करेगा तो दूसरे उसे मानेंगे नहीं। ऐसे ही हम चाहते तो हैं कि मन हमारे वश में रहे, लेकिन जब तक हम अपने स्वमान की सीट पर नहीं, मैं राजा हूं, मन को मेरी बात माननी ही है, उसे मेरे कहने पर चलना ही है, ये जब हम अपने सोमान की सीट पर स्थित होकर मन को ऑर्डर करते हैं जैसा बाबा ने कहा और किया, तब से मन बाबा के कहने अनुसार चलने लगा। इसी तरह बाबा ने बुद्धि को ऑर्डर किया कि हे बुद्धि, तू भी मन के कहने पर मन के पीछे पीछे चलती रही और तुम दोनों ने मिलकर मुझे कमजोर बना दिया। मैं राजा हूं फिर भी मुझे तुम दोनों ने कमजोर कर दिया और जिधर तुम कहते रहे मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलता रहा। लेकिन हे मन, हे बुद्धि, अब मैं तुम्हें कह देता हूं कि तुम्हें मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारे कहने पर नहीं चलूंगा क्योंकि मैं राजा हूं। मन मंत्री है, बुद्धि जैसे सेनापति है, संस्कार सैनिक है। हम कह देते हैं क्या करें, संस्कार, पुराना संस्कार जागृत हो गया, संस्कार ये मेरा पुराना संस्कार है। बाबा ने कहा नहीं, संस्कार सैनिक है और बुद्धि संस्कारों के ऊपर उनकी सेनापति है, मन मंत्री है। तो इसीलिए मन बुद्धि को अपने नियंत्रण में रखो। इसी को बाबा कहते हैं रोज रात को सोते समय अपने मन बुद्धि की दरबार लगाओ। तो ये बाबा का पुरुषार्थ था, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में भी कहा गया है, बाबा ने भी कहा है, मन के लिए क्या कहा है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन जीते जगत जीत, माया जीते जगत जीत। भक्ति में भी कह देते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा। गीता में भी कहा है मन मना भव, तन मना भाव या धन मना भाव या संबंध मना भाव नहीं, मन मना भाव। तो सारा खेल ही मन का है। जब हम मन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं हम विजयी रतन बन जाते हैं, मन जीते जगत जीत, चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। उसमें भी सुनते हैं ना, जब भी पुराने जमाने में कोई राजा चक्रवर्ती राजा होने चाहता था, विश्व का महाराजा, जैसे रामचंद्र जी ने का भी वर्णन आता है, क्या करते थे, यज्ञ रचते थे और यज्ञ के बाद एक घोड़ा छोड़ देते थे और घोड़े पर लिखा होता था फलाने राजा ने यज्ञ रचा, ये घोड़ा है और आप लोग जहां जहां घोड़ा जाता था बस उन राजाओं को उस जो जिसने यज्ञ किया उसकी अधीनता स्वीकार करनी होती थी। यदि कोई उसकी अधीनता स्वीकार नहीं करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता था और युद्ध में जो जीतता था वही चक्रवर्ती राजा बनता था। तो ऐसे ही हम सब बच्चों ने भी ये हमारा, हम चक्रवर्ती राजा महाराजा महारानी बनने वाले हैं, भगवान ने हमें चुना है, हम कोई साधारण बच्चे नहीं है। देखने में हमारा रूप साधारण आता है लेकिन हम भगवान का सिलेक्शन है। पूरी इतनी 600-700 करोड़ आत्माओं में से भगवान ने हम बच्चों को चुना है, हम भगवान के चुने हुए रतन हैं और भगवान का सिलेक्शन कभी भी गलत नहीं हो सकता, हम वही हैं। चक्रवर्ती राजा महाराजा महारानी बनने वाले, ये नशा हमें होना चाहिए, हमें भगवान ने चुना है, हम वही हैं कल्प पहले वाले और हमें बनना ही है। कल्प पहले भी मैं चक्रवर्ती महाराजा महारानी बना था, बनी थी, अभी बाबा आप हमें फिर से बना रहे हो। बस जितना जितना हम इस नशे में रहेंगे उतना क्या होगा, हम महसूस करते जाएंगे कि ये मन जो है ना हमारे वश में होता जा रहा है। बस हमने भी यही मन को चक्रवर्ती राजा यज्ञ रचा है बाबा ने, हम भी होवनहार राजाओं ने ये मन रूपी घोड़ा छोड़ा हुआ है। एक तरफ ये हमारी सेना है, दिव्य गुण दिव्य शक्तियां ये हम हैं, दूसरी तरफ माया के सेनानी हैं, उनको हराते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो दूसरा बाबा का ये पुरुषार्थ। तीसरा बाबा का पुरुषार्थ देखा जब पहले 1961-62 के करीब जब ज्ञान में आए, जब साकार बाबा से मिलते थे, बाबा हम लोगों की बात बड़े गौर से सुनता था, सेवा की बात सुनाते थे, बाबा डायरेक्शन देता था, ये सर्विस करो, रोटरी में जाओ भाषण करो, लायंस में जाओ, मंदिर में जाके ये सेवा करो, चित्रों पर सेवा करो, बहुत बाबा विस्तार से समझाता था। लेकिन धीरे धीरे हम देखते जा रहे थे कि बाबा जितना कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, उतना उतना बाबा समेटते जा रहे थे। जो बाबा अभी हम बच्चों को भी कहता है ना, समेटने की शक्ति है। सब कुछ होना है, अचानक होना है, एवर रेडी रहना है, और एवर रेडी रहने के लिए समेटने की शक्ति बहुत आवश्यक है। तो समेटने का मतलब ये नहीं कि कोई बाबा ने सब कारोबार छोड़ दिया था। इतना बड़ा यज्ञ है, रोज बाबा क्लास में आके मुरली सुनाता था, ज्ञान सुनाता था, बच्चों से पार्टी से मिलता था, इतना भवन का निर्माण हो रहा था, उनको सुपरवाइज करता था, मकान बाहर भी जाता था बाबा, बंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, आदि आदि सब जगह बाबा जाते थे, वहां बच्चों को रिफ्रेश करते, सारे काम। लेकिन बुद्धि से जैसे बाबा समेटते जा रहे थे, ऐसे ही हमें भी कोई प्रवृत्ति को छोड़ना नहीं है, लेकिन बुद्धि से समेटते जाएंगे। और उसका प्रमाण क्या है कि हम समेटते जा रहे हैं, वो कि जब भी हम योग लगाएंगे, ध्यान लगाएंगे, हमारी बुद्धि भटकेगी नहीं। अगर हमने समेटा हुआ नहीं होगा, जहां पर भी बुद्धि को आकर्षण की चीज मिलेगी, प्रवृत्ति है, बच्चे हैं, नौकरी है, धंधा है, पैसा है, वहां पर बुद्धि भाग जाएगी न चाहते हुए भी। तो समझना चाहिए कि अभी मैंने समेटा नहीं है, वहां बुद्धि जा रही है। और जो गायन है, अंतमते सो गति का गायन, इसलिए उस अंतिम पुरुषार्थ के लिए मुझे क्या करना है, धीरे धीरे इस अभ्यास को पक्का करते जाना है। और बाबा उस अभ्यास को पक्का करते जा रहे थे। और उसका लक्षण क्या था कि वो अभ्यास पक्का होता जा रहा है, बाबा से जब पार्टियां मिलने आती थी ना, तो ऐसे जैसे अभी भी दादियों से जब मिलते हैं, मिलने आते हैं बाबा के सीजन में, तो भाई अच्छा आप 10 बजे आ जाना, कलकत्ता की पार्टी 10 बजे, 10:30 बजे बम्बई की पार्टी, 11 बजे पंजाब की पार्टी आ जाए, 11:30 बजे अहमदाबाद की, आदि आदि ऐसे होते थे। तो हम देखते थे, बस ब्राह्मणी जब पार्टी लेकर जाती थी, बाबा बैठे हैं, आंख खुली हुई है। अब बाबा 3 जगह में से कहीं जगह मिलते थे, या तो अगर बहुत कम लोग होते थे, थोड़े होते थे, तो कई बार बाबा अपने कमरे में भी 2-3 लोग होते थे, कई बार वहां मिल लेते थे, या थोड़े ज्यादा और होते थे 5-6, तो बाबा झोपड़ी में, बाबा की झोपड़ी है ना मधुबन में, वहां, या फिर और 10-12-15-20 का। उस समय में बहुत ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप तो होते नहीं थे, 100-200-500 के, बस 10-15-20-25 ऐसे ही छोटे ग्रुप। तो वो हिस्ट्री हॉल में जहां पर बाबा क्लास कराते थे वहां मिलते थे। तो बस ब्राह्मणी पार्टी लेके अपने टाइम पर जाती थी, बस देखती थी बाबा बैठे हुए हैं, आंख भी खुली हुई है, लेकिन अपने में बाबा जैसे मगन है। ब्राह्मणी जाके खड़ी भी हो जाती थी, तो बस बाबा अपने ध्यान में, अपने उसमें इतने लगन में मगन होते थे, ब्राह्मणी को कई बार बुलाना पड़ता था, टीचर को, बाबा बाबा, और बाबा को जैसे कभी कभी एक जट जैसा, एकदम जैसे शारीरिक रूप से बाबा यहां हैं, लेकिन मानसिक रूप से जैसे बाबा ने कई स्थान बताए हैं, परम धाम, सूक्ष्म वतन, पूरी दुनिया को सकाश देना, भक्तों के पास जाना, आदि आदि, फरिश्ता रूप, अव्यक्ति रूप, कभी नई दुनिया की। तो जैसे जो बाबा ने 5 स्वरूपों का वर्णन हमें बताया हुआ है, ऐसे शारीरिक रूप से वाले बाबा यहाँ हैं, लेकिन मानसिक बौद्धिक रूप से बाबा जैसे विश्व सेवा में सदा तत्पर रहते थे। और जब बस ब्राह्मणी बोलती थी, जर्क लगता था, बाबा अच्छा अच्छा बच्ची आ गए पार्टी लेके, आओ 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 बच्चे, फिर बाबा एक एक से मिलते थे, एक एक को मिलके हालचाल पूछते थे, ढोली खिलाते थे। देखो जैसे ही बाबा करते थे और बाबा की भाव में एक जाता था, मैं बता रहा था, विदेही हो जाता था। फिर पार्टी तो होती थी, कई लोग होते थे, फिर बाबा धीरे धीरे ऐसे कई बार थपथपाते थे, आओ बच्चे, जैसे देह में बाबा फिर ला रहे हैं। क्या वंडर कि अभी तो हमें विदेही बनने का पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन बाबा की इतनी मैग्नेटिक पावर थी, इतनी शक्ति कि बाबा की भाव में आए विदेही हो जाते थे और फिर देह में आने का पुरुषार्थ करते थे, देह में आते थे, फिर बाबा टोली खिलाते थे, हालचाल पूछते थे और सेवा की बात पूछते थे, फिर एक जाता था, फिर दूसरा आता था, उसके साथ भी यही होता था। और बस आप समझो क्या स्थिति होगी जब एकदम अपने को विदेही स्थिति का अनुभव करेंगे। तो अब अभी बाबा यही चाहता है हम बच्चों को भी, कि हम बच्चे भी आत्मिक रूप से इतने शक्तिशाली हो जाएं कि किसी भी आत्मा को दृष्टि दें, किसी पर भी हमारे जो शुभ भावना शुभ कामना इतनी हो, हमारे वाइब्रेशन इतने शक्तिशाली हो कि जो भी आत्मा हमारे सम्मुख आए बस दृष्टि लेते ही वो भी विदेही स्थिति का अनुभव करे। अभी बाबा ने जो अवस्था प्राप्त की, अभी हम बच्चों को भी उसी अवस्था को प्राप्त करना है। और इस तरीके से जब हर एक 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 बच्चा मिलता था और फिर बाबा एकदम जैसी पार्टी गई और दूसरी पार्टी के आने में समय है, फिर बाबा अशरीरी हो जाता था, बस विदेही। तो जो बाबा चाहता है इतना हमारा अभ्यास पक्का हो कि जब चाहे हम देह में आए, जब चाहे हम देह से न्यारे हो जाए। ये अभ्यास बाबा ने इतना, नहीं तो बाबा भी तो देखो साधारण घर गृहस्थी वाला था। 1936 से पहले जब बाबा की 60 वर्ष की आयु हुई तो बाबा भी बिल्कुल साधारण गृहस्थ परिवार का, बाबा की जीवन कहानी में भी लिखा हुआ है कितना बाबा हीरे जवाहरात का पारखी था, व्यापारी था। उनकी पत्नी ने जब बाबा की लगभग 50-55 वर्ष की आयु थी तो पत्नी ने कहा कि चलो अब हमने बहुत कमा लिया है, अब कहीं तीर्थ स्थान पर जाकर रहते हैं, भगवान का भजन करेंगे। तब तक तो ज्ञान था नहीं, लेकिन बाबा इतना पारखी था, बाबा ने कहा नहीं, अभी और हम 2-5 साल और धन कमा लें और उसके बाद फिर हम ईश्वर सेवा में लगेंगे। तो बात चल रही थी कि बाबा से मिलते थे, ऐसी स्थिति का अनुभव करते थे, लेकिन बाबा जैसे जैसे धीरे और कर्मातीत अवस्था की तरफ बढ़ते चले जा रहे थे, तो लगभग 65-66 की बात में हम देखते थे बाबा से मिलते थे, बाबा को ये समाचार सुनाएंगे, ये बाबा के सम्मुख गए और थोड़ा सा ही 1-2 लाइन 3 लाइन सुनाई, बस बाबा कहता था बच्चे बाबा समझ गया। अरे बाबा अभी तो हमने बोलना शुरू ही किया है, थोड़ा ही समाचार, नहीं नहीं बच्चे बाबा समझ गया, और फिर बाबा तुरंत उसका समाधान दे देता था। लेकिन अंत में जब 1968-69 में हम मिलते थे, हमें एक सौभाग्य और मिला कि जब बाबा की कर्मातीत अवस्था हुई 18 जनवरी 1969, तो 17 तारीख की सुबह हम यहाँ पर आ गए थे। बहुत दूर आसाम में पोस्टेड थे, अपना इंजीनियरिंग पास करने के बाद पहली पोस्टिंग आसाम में हुई थी, तो वहां से 17 और 18 जनवरी को 2 दिन हमें बाबा की संपूर्ण कर्मातीत अवस्था देखने का मौका मिला। और हम सब उसी मार्ग के राही हैं, हम सभी चाहते हैं कि हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करें। तो उन 2 दिनों में जो विशेष हमने देखा वो बात मैं और कुछ आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ, जिससे कि हम सब का ध्यान अगर उधर रहेगा तो हम भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकेंगे। तो एक तो उन 2 दिनों में विशेष ये देखा, बाबा के पास जाते थे, वहां पर बहुत अच्छी सेवा हो रही थी, बाबा को ये सेवा का समाचार सुनाएंगे, ऐसा करेंगे, अपनी व्यक्तिगत पुरुषार्थ की कोई बात बाबा से पूछनी है ये पूछेंगे, कई बात लेके मन में जाते थे। लेकिन बाबा के सम्मुख गए, पहले मैंने बताया बाबा डिटेल में सुनते थे 61, 62, 63 के करीब, फिर और बीच में बाबा बहुत संक्षिप्त में एक दो लाइन में सुनते थे। लेकिन उन दो दिनों में खास हमने ये अनुभव किया, बाबा के सम्मुख गए, बस बाबा जरा सा यूं दृष्टि देता था, हमें बोलने की एक अक्षर भी जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए, मतलब मन में क्या प्रश्न है बाबा वो भी बता देता था। अच्छा ये पूछने आए हो, अच्छा ऐसा कर लो, ऐसा हो जाए। एक बार हुआ, दो बार, तीन बार, चार बार, दो दिन में जब ये 6-7 बार हुआ ऐसा, बड़ा ही आश्चर्य लगता था। हम तो गए, मन में जो विचार चल रहा है तुरंत बाबा ने विचार भी बता देते थे, एक अक्षर भी हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो बाद में जब हमने एक बार मनमोहनी दीदी जी से, बड़ी दीदी होते थे, उनसे पूछा, तो दीदी ने उसका बताया कि देखो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, संपूर्ण स्थिति के अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप होती है, तो क्या होता है, उस आत्मा के मन में कोई भी इच्छा नहीं रहती है। इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है, मन के ऊपर संपूर्ण रीति से नियंत्रण हो जाता है, मन जीते जगत जीत का जो गायन है, संपूर्ण संकल्पों के ऊपर विजय हो जाती है। और इस कारण से जब अपनी कोई भी इच्छा नहीं होती तो दूसरे की इच्छा को वो तुरंत ही पढ़ सकता है, और दूसरे की इच्छा को पढ़ ही नहीं सकता, पढ़ने के बाद दूसरे की इच्छा को उसको संपूर्ण रीति से पूर्ण भी कर सकता है, जो भी इच्छा लेके व्यक्ति आएगा। तो मैंने तो खुद अनुभव किया 6-7 बार, कोई भी मन में जो संकल्पता होता था, अच्छा बच्चे ये पूछने आए हो, ऐसा कर लो, ऐसा, ये तो हुआ ही। लेकिन साथ साथ 18 जनवरी की रात्रि क्लास, अंतिम क्लास में जो अनुभव किया वो तो और भी विचित्र था। बाबा अपनी अंतिम क्लास, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के साकार माध्यम के द्वारा बाबा कराने के लिए आए। रोज बाबा क्लास, हमारी मधुबन में नियम है शुरू से कि 8:45 बजे रोज रात को क्लास होती है, 9 से 10 तक, और उसमें ही बाबा भी थे, जब मामा भी थे उसी समय क्लास हुआ करती थी, फिर 10 बजे तक पूरी होके सब अपना सोने चले जाते थे। लेकिन उस दिन बाबा ने 7 बजे ही ये ऐलान करा दिया, वो एक भाई होते हैं जमुना प्रसाद भाई जो मुरली के मुरली छापते हैं ना, तो बाबा ने उनको बुला के कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराएगा, सबको बता दो। तो पहले क्लास के बाहर घंटा स्कूल में जैसे होता है ना, पहले तो लाउड स्पीकर वगैरह थे नहीं, तो घंटा बजा के उन्होंने कहा आज बाबा जल्दी क्लास कराएंगे, सब लोग जल्दी भोजन करके फिर 7:30-8 बजे तक क्लास में आ गए, और फिर बाबा उस दिन जल्दी ही क्लास कराने आ गए। क्योंकि शिव बाबा को तो मालूम था आज साकार के द्वारा मेरा बच्चों से ये अंतिम मिलन है, और इसीलिए बस बाबा ने पहले ही जैसे सबको बता दिया। और बाबा जब आए क्लास में, बस बाबा ने क्लास शुरू किया। और देखो जब आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है ना, तो क्या होता है, अब बाबा की इतनी आयु थी 93 ईयर्स की, 93 वर्ष की आयु, वृद्धावस्था थी, बाबा को कई बार खांसी भी आती थी। पहले तो बाबा हंसी में क्या कहता है, कई बार साकार मुरली में भी बाबा कहता है ना, मैं शिव बाबा को बोलता हूँ बाबा देखो ये खांसी कौन है, ये कौन है, मेरी सखी है, फ्रेंड है, ये सखी से बाबा आप मेरा पीछा छुड़ाओ, ये मेरे साथ साथ ये लगी रहती है खांसी। और तो शिव बाबा क्या जवाब देता था, बच्चे ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है, जो तुम्हारा हिसाब किताब है वो तुम्हें चुकतू करना है, बाबा इसमें कुछ नहीं कर सकता, हर एक को अपना अपना हिसाब किताब। तो जब समझो जब ब्रह्मा बाबा नंबर 1 आत्मा उसको भी कोई कंसेशन नहीं हिसाब किताब चुकतू करने में, तो आपको या हमें कोई कंसेशन होगा? नहीं होगा। लेकिन अपना हिसाब किताब हम कैसे चुकतू करें, बाबा उसका लिविंग एग्जाम्पल था। क्या था? बाबा को कई बार खांसी आती थी और बस खांसते हुए लगता था बहुत तकलीफ हो रही है, आंखें भी कभी कभी गीली जैसे हो जाते थे, लेकिन दूसरे ही क्षण बस बच्चे देखो ये हिसाब किताब है। और जो हिस्ट्री हॉल में बाबा के पास ही कृष्ण का एक चित्र ट्रांसलाइट का रखा हुआ था, श्री कृष्ण जी का और लक्ष्मी नारायण का, तो बाबा कहता था बच्चे इतनी खुशी होनी चाहिए कि ये जो शरीर की बीमारी है, गम है, कोई तकलीफ है, वो सब जैसे खुशी इतनी हो जो गम को खा जाए, इतना खुशी हो। और बच्चों को खुशी में क्या करना चाहिए? खग्गियां मारनी चाहिए। फिर बाबा पूछता था बच्चे जानते हो क्या खग्गियां कैसे मारते हैं? हमें तो मालूम नहीं था। एक बार ऐसे ही बाबा ने क्लास में पूछा तो किसी किन्हीं भाइयों ने पूछा कि नहीं, अरे बच्चे नहीं जानते? देखो बाबा बताता है कैसे। हाँ कैसे बाबा? खुशी इतनी हो, खग्गियां ये सिंधी शब्द है, ओ बस कल ओ ऐसे, वाह बाबा कल मैं जाके ऐसा मिचनू कृष्ण बनूंगा, अभी तो देखो ये पुराना शरीर, खांसी आती है, तकलीफ होती है, लेकिन कल जाके ऐसी दुनिया का आप हमें मालिक बना रहे हो। बाबा का चेहरे पर एकदम छोटे कृष्ण का सा स्वरूप आ जाता था, और जैसे बच्चे खुशी में ना किलकारियां मारते हैं, ऐसे बिल्कुल बाबा का स्वरूप हो जाता था। ओ ये हम बच्चों के लिए ये भी शिक्षा है कि कभी भी कोई शारीरिक व्याधि हो, तन का पेपर हो, धन का, संबंध का, मन का, कोई भी पेपर हो, वो पेपर हमारी खुशी को गायब ना करे। बस कितना बड़ा बाबा के सम्मुख पेपर होता था, कितने बड़े बड़ा यज्ञ, यज्ञ में कोई कितनी बातें हो जाती थी, बस कोई बात नहीं बच्चे कल बाबा जाके ये बनेगा, इतनी खुशी रहती थी बाबा को, वो चेहरे से झलकनी चाहिए। दुनिया आके पूछे आपको क्या मिला है, कौन सी लॉटरी मिली है आपको जो आपका चेहरा इतना खुशी से चमक रहा है। तो एक बाबा से ये हमें शिक्षा लेनी है कि कर्मातीत अवस्था पहुंचने का रास्ता कोई कठिन नहीं है। बाबा ने एक एक चीज करके दिखाई, शिव बाबा ने कहा बाबा ने करके दिखाया। एक ये हमारा लक्ष्य वो रहे कि मुझे कभी भी खुशी गायब नहीं होने देनी है। और क्या देखा बाबा के, जो मैं बता रहा था कि बस बाबा के पास जाते थे और बस बाबा मन के भावों को परख करके ना बता देता था, ये प्रश्न पूछने आए हो तो मैंने बता रहा था आपको, मैंने बड़ी दीदी जी से पूछा एक बार, तो दीदी ने कहा देखो जब कोई आत्मा कर्मातीत अवस्था के निकट होती है, उसकी अपनी इच्छाओं पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि उसे कोई इच्छा नहीं रहती और वो इच्छा मात्रम अविद्या हो जाती है, और इस कारण से दूसरे की इच्छाओं को वो तुरंत जान लेती है। अभी बाबा भी जैसे कर्मातीत अवस्था के निकट है, कोई भी आत्मा उनके सम्मुख जाती है, तो मैं बता रहा था 18 जनवरी को बाबा क्लास कराने आए, हम सम्मुख बैठे हुए थे, बाबा क्लास करा रहे थे, अंतिम क्लास थी बाबा की, क्योंकि 18 जनवरी को बाबा ने जब क्लास कराई, उस दिन सुबह बाबा ने क्लास नहीं कराई थी, सिर्फ योग कराया था और योग के द्वारा सब आत्माओं में शक्ति भरी थी। और 18 जनवरी की रात्रि को तो क्लास सुनते सुनते हमारे मन में एक संकल्प आया, आपको बताते हैं आप तो अपने ही बाबा के बच्चे हो, कि बाबा मन में संकल्प आया क्या ही अच्छा हो, बाबा जनरल मुरली तो चला ही रहे थे, कि बाबा कुछ हमारा नाम लेके या हमारे प्रति कुछ महावाक्य उच्चारे जो जीवन में हमेशा हमारे लिए मार्ग प्रदर्शना बन जाए। बस मन में संकल्प ही आया, कोई बोलने का मार्जिन नहीं, कुछ नहीं, मन में संकल्प आया। लेकिन जो गायन है शास्त्रों में कि भक्त की मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं, भक्त में जो भी संकल्प आता है, जो इच्छा होती है, भगवान के मुंह से कौन सा शब्द निकलता है? बस एक ही शब्द, तथास्तु। जो भी कामना हो पूर्ण, तो प्रैक्टिकल हमने अनुभव किया, मन में जैसे ही यह संकल्प आया कुछ ही सेकंड में बस बाबा ने नाम लेकर के महावाक्य उच्चार दिया हमारे प्रति, जो हमारे जीवन में हमेशा के लिए मार्ग प्रदर्शना बन गए। आज तक भी 18 जनवरी की टेप में वो महावाक्य भरे हुए हैं। और वो ये पार्ट केवल सुन के ही हमें संतुष्ट नहीं हो जाना है, हम एक एक बच्चे के द्वारा ये पार्ट अब आगे चलना है। जब दुनिया की आत्माएं हमारे सम्मुख आएंगी, अनेक इच्छाएं लेकर आएंगी, कोई साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी, कोई अपने कोई भी अनेक प्रकार की इच्छा, कोई देवी का भक्त होगा कि मुझे देवी का साक्षात्कार हो, कोई कृष्ण का भक्त होगा, कोई राम का होगा, कोई हनुमान का होगा, जो जैसी साक्षात्कार की इच्छा लेके आएगी, साक्षात्कार की चाबी तो एक शिव बाबा के पास है, लेकिन शिव बाबा हम बच्चों के द्वारा उन आत्माओं को वो ही साक्षात्कार कराएगा जैसी वो इच्छा लेके आई है, जैसी उसकी भावना है, क्योंकि तभी उसमें ही संतुष्टि होगी। हम सब ने बाबा की जीवन कहानी पढ़ी है ना, आपने पढ़ी होगी, यज्ञ के शुरू में जब ज्ञान हुआ, बहुत परिवार के परिवार आने लगे, कोई परिवार से एक आता था, दो आता था, नहीं आते थे बाकी, तो ऐसे ही एक परिवार था सरदार जी का, परिवार के और लोग आते थे लेकिन वो सरदार जी नहीं आते थे, उनमें दुश्मनी का भाव पैदा हो गया और उन्होंने कहा कि मैं बाबा को मार दूंगा। वो छुरी लेकर के आया और बाबा का हत्या करने के उद्देश्य से, नुकसान पहुंचाने के, तो भाई बाहर तो आके उसने कहा मुझे बाबा से मिलना है। बहनों ने कहा ठीक है, बहनें ले गई बाबा के पास, बैठा दिया उसे, परिचय कराया, फिर बहन चली गई। और जब वो सरदार जी अकेले थे और बाबा के साथ वार्तालाप चल रहा था, तब मौका देख करके उसने छुरी निकाली। बाबा की जीवन कहानी में ये लिखा हुआ है प्रथम भाग में। तो बस वो आक्रमण करने ही वाला था, क्या हुआ, उसे साक्षात्कार हुआ। ब्रह्मा बाबा की जगह उसे कौन दिखाई दिया, गुरु नानक देव जी। अब देखो ब्रह्मा बाबा है तो श्री कृष्ण की आत्मा, नारायण की आत्मा, सभी ब्राह्मण बच्चों को, यज्ञ में आने वालों को, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार होता था, किसी को नारायण का, स्वर्ग का, नई दुनिया का, सब रास करते थे, खेलते कूदते थे। लेकिन सरदार जी की भावना चूंकि गुरु नानक देव जी में थी, और इसीलिए शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा गुरु नानक देव का साक्षात्कार कराया। और जैसे उसे साक्षात्कार हुआ, वो तो हक्का बक्का रह गया। ओहो गुरु जी, मैं ये क्या करने चला था, मैं आपको मारने चला था, मैं कितना पापी हूँ। उसकी आंख से आंसू बहने लगे, छुरा उसने बाबा के चरणों में रख दिया, बाबा के पैरों में गिर गया, हे गुरु जी, और बस मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, और करता रोता रहा। और उसके बाद वो वहां से फिर क्षमा मांग करके चला गया। अब देखो ब्रह्मा बाबा की आत्मा कोई गुरु नानक देव की आत्मा नहीं, लेकिन बाबा ने उनके द्वारा वो साक्षात्कार कराया जिसमें उन सरदार जी की भावना थी। ऐसी हमारे सम्मुख जब अंत में बहुत आत्माएं आएंगी तो हम एक ही होंगे, लेकिन किसी को देवी का साक्षात्कार होगा, किसी को राम का, किसी को कृष्ण का, किसी को जो जैसी भावना लेकर के आया होगा हमारे द्वारा, उसको वैसा साक्षात्कार होगा। बाबा के द्वारा ऐसा पूरे जीवन भर बहुत हुआ, अनेकों को जो जैसी भावना लेकर के आता था उसको वैसा साक्षात्कार होता था। और वही पार्ट अब हम बच्चों के द्वारा चलना है। बस कंडीशन ये है कि हमारा तन और मन, ये दोनों हमारे पवित्र रहे। बाबा चाहता है मन को, योग को, तो योग के द्वारा तो हम आत्मा को पवित्र कर ही रहे हैं, लेकिन तन के द्वारा भी हमें कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है अशुद्धता का, पवित्रता का। और बाबा कहते हैं यहाँ तक कि किसी को दुख भी दिया ना, वाणी से भी दुख दिया। हमें याद है जब शुरू में हम ज्ञान में आए थे तब बाबा की मुरलियां चला करती थी, बच्चे कर्मणा से कोई विकर्म नहीं करना है, उससे विकर्म बनता है, बाकी अंत तक मंशा में तो तूफान आते ही रहेंगे, मंशा से विकर्म नहीं। फिर बाबा बीच में और सूक्ष्म में ले गए, अगर वाणी से भी किसी को दुख दिया तो दुखी होकर मरेंगे। तो वचन से भी किसी को हार्श वचन, कठोर वचन, दुखदाई, अपमानजनक, टोंटिंग वाले वचन नहीं बोलने हैं, जिससे किसी को उससे दुख हो। और फिर बाबा और सूक्ष्म ले गए कि वचन की बात नहीं, अगर मंशा में भी किसी के लिए अगर खराब बात आई तो हमारे ऑरा, हमारे वाइब्रेशन के द्वारा वो बात उस तक पहुंचती है, उसका भी विकर्म बनता है। और अभी तो बाबा यहां तक और भी सूक्ष्म में ले गया कि वृत्ति के अंदर भी, स्वप्न भी हमारा किसी के प्रति अशुद्धता का, हमारी वृत्ति भी ऐसी अशुद्ध ना हो। कितने तक बाबा हमें महान बना रहा है, सूक्ष्म में सूक्ष्मता की ओर ले जा रहा है। एक हमें ये ध्यान रखना है, अपने बाबा की तरह हम कर्मातीत अवस्था को तब प्राप्त करते चले। और क्या बाबा का देखा कि जब ये जितना जितना हमारा पुरुषार्थ और आगे बढ़ता चला जाता है ना, तो अंत में हमने ये देखा 18 जनवरी को, ये सुन रहे थे जैसा मैं बता रहा हूं आपको, कि बाबा ने मुरली चलाई। उसके बाद मुरली चला के उस दिन की मुरली में एक विशेषता थी, कौन सी, 18 जनवरी की मुरली में, जो और किसी मुरली में नहीं, कि उस दिन बाबा को एक बार भी खांसी भी नहीं आई, एक बार भी बाबा को गला साफ करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो इस बात का प्रतीक है कि जब आत्मा अपनी कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच जाती है तो शरीर के कर्म भोग के ऊपर योग बल संपूर्ण रीति से विजय प्राप्त कर लेता है, और फिर कर्म भोग जो है ना उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं दे सकते। तो उस दिन की मुरली में बाबा ने पूरा आधा घंटे 35 मिनट तक मुरली चलाई, एकदम इतना फ्लो मुरली में, एक बार भी खांसी नहीं, गला साफ करने की जरूरत नहीं। तो हम बच्चों को भी यही कि जो भी शरीर की भोगनाएं आती है ना, वो भोगना बस अंतिम पेपर लेने के लिए आती है, और फिर ये भोगनाओं के साथ जब शरीर का हिसाब किताब चुक्त हो जाएगा, फिर कोई भी भोगना जो है हमें कष्ट प्रदान नहीं कर सकती, हम बिल्कुल शरीर से न्यारे। और उस दिन बाबा का मुरली में यही देखा। उसके बाद बाबा मुरली चला के अच्छा मीठे मीठे बच्चों को याद प्यार गुड नाइट कहा बाबा ने, खड़े हुए, थोड़ा चलने लगे, फिर बाबा खड़े हो गए, फिर घूम करके बाबा ने एक एक बच्चे को दृष्टि दी, हर एक को बिल्कुल खड़े होके बाबा ऐसा दृष्टि दे रहे हैं, और दृष्टि दे करके फिर बाबा और आगे चले, फिर खड़े हो गए। तो देखो हिस्ट्री ऑल कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन संदली से उठ के बाबा दरवाजे तक जाते जाते 3-4 बार बाबा रुके, और बार बार बाबा दृष्टि दें, और सबको तो दृष्टि दें, लेकिन खास बाबा की दृष्टि बड़ी दादी जी, दादी प्रकाशमणि जी आगे ही बैठे हुए थे, बार बार बाबा की दृष्टि उनकी तरफ जाती थी, उनकी तरफ टिक जाती थी। बाबा उनको बहुत बल, बहुत शक्ति और देते थे। बाबा को तो था, शिव बाबा को तो मालूम था, बस ये मेरा अंतिम में ब्रह्मा के द्वारा साकार मिलन इन बच्चों के द्वारा हो रहा है, और अब तो बस शिव बाबा इस यहाँ से छुट्टी लेने वाला है। तो इस रीति से बाबा 3-4 बार कह के फिर दरवाजे के पास गए, फिर बाबा ने कहा अच्छा बाबा बच्चों से छुट्टी लेता है, विदा लेता है। ये शब्द बाबा ने पहले कभी नहीं बोले, ये बोल के बाबा गए। और फिर कमरे में तो जाके हम सब ने जैसे सुना है, दादी जी के हाथ में हाथ, दादी जी के साथ नैन मुलाकात करते हुए बाबा ने छुट्टी ली। लेकिन सबसे बड़ी विश्व इतिहास की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये कि 18 जनवरी की रात को बाबा ने शरीर छोड़ा। 18 की रात भर शरीर रखा रहा, 19 का दिन भर, 19 की रात, 20 का सारा दिन भर, 20 की रात, और 21 को भी दोपहर के बाद, तीसरे पहर बाबा का दोपहर बाद संस्कार किया गया। लगभग 65-70 घंटे तक वो शरीर रखा रहा, हम तो वहीं थे। और शरीर को अग्नि संस्कार करने से पहले जब हम शरीर को स्नान कराया गया, शरीर को लाया गया, हमने देखा बस बाबा का शरीर बिल्कुल वैसा ही फ्लेक्सिबल। नहीं तो जब आत्मा शरीर छोड़ के जाती है शरीर अकड़ जाता है, स्टिफ हो जाता है, लेकिन बाबा ने इन पांच तत्वों को भी इतना पावन बना लिया था। जो बाबा अभी हम बच्चों को भी कहता है, बच्चे तत्वों को भी आपको पावन बनाना है, बाबा तो उसका लिविंग एग्जाम्पल था। शरीर जब आत्मा छोड़ के जाती है शरीर काला पड़ जाता है, कुछ दुर्गंध आती है। हम वहां पर तीन दिन तीन रात साथ साथ थे, हमने देखा ना शरीर बिल्कुल काला पड़ा, बिल्कुल वैसा ही गौर वर्ण बाबा का, और लगता था बाबा सोए हुए हैं, हमेशा की तरह उठ के कहेंगे आओ बच्चे, आओ मीठे बच्चे, आओ प्यारे बच्चे, आओ स्वीट चिल्ड्रन। एकदम गोरा चमकता हुआ शरीर, एकदम शरीर में कोई दुर्गंध नहीं, एकदम शरीर भी बिल्कुल जैसे साधारण मनुष्य जीवित मनुष्य का वैसा ही, कोई स्टिफनेस नहीं, कोई अकड़पन नहीं। यह है प्रकृति पर विजय, पांच तत्वों पर विजय का प्रतीक, जो बाबा अभी हम बच्चों को भी चाहता है कि हम बच्चे भी इन प्रकृति के पांच तत्वों को इतना योगदान करें, हम उस पर विजय प्राप्त करें। और ये शरीर तो हमारा आदि से लेकर अंत तक का साथी है। पांच तत्व, पहला जन्म हो चाहे अंतिम 84वां जन्म हो, पांच तत्वों से बना हुआ शरीर तो भले नाम रूप अलग अलग होंगे हर जन्म में, लेकिन होंगे तो इन्हीं पांच तत्वों का बना हुआ शरीर ना। अभी ये तत्व जो तमो प्रधान हो गए हैं, अब बाबा चाहता है इन तत्वों को हम प्रतिदिन जैसे हम योगदान करते हैं, अपने को योग लगाते हैं, सृष्टि की अनेक आत्माओं को योगदान करके उनको दुख अशांति की घड़ी में शक्ति पहुंचाते हैं, ऐसे ये प्रकृति के तत्व भी अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं, कब मेरे ये मालिक मुझे तमो प्रधानता से सतो प्रधानता की ओर ले चले, कब मैं हम तत्व भी सतो प्रधान हो और अपने इन मालिकों को हम उनकी सेवा का हमें अवसर मिले। अभी तो ये तत्व भी जैसे हमारे मालिक हो गए हैं, हम उनके गुलाम हो गए हैं, लेकिन यही तत्व अब आशा कर रहे हैं हम जो उनके मालिक हैं, हम उन तत्वों को भी दुख अशांति से उससे निकाल करके उनको सतो प्रधानता की ओर ले चले। बाबा उसका लिविंग एग्जाम्पल था। जब उनको बाबा का अग्नि संस्कार भी किया गया, उस समय देखा बिल्कुल कैसे ऐसा बाबा लग रहा था, अभी भी जैसे बाबा विश्व को शांति का दान देते हुए चलता जा रहा है। तो अब बाबा यही चाहता है कि हम एक एक बच्चा ज्वालामुखी योग के द्वारा, अब ये कैसे होगा अंत में पांच मिनट में मैं ये बता देता हूं, इन प्रकृति के तत्वों को भी कैसे हम सतो प्रधान बनाए, कैसे हम मित्र बनाए। देखो ये पांच तत्व है ना, मित्रता किनके बीच में होती है, दोस्ती मनुष्यों में भी आपस में हम लोगों की मित्रता उनके बीच में होती है जिनके संस्कार एक जैसे होते हैं। क्लास के बाद भी मुरली सुनी, सब अपने अपने घर जाने से पहले आपस में दो तीन का ग्रुप कोई भी आपस में बातचीत करते हैं, क्या हाल चाल है आदि आदि, जिनके संस्कारों में मैचिंग होती। ऐसी हम अपने संस्कारों को इन तत्वों के अनुरूप बना लें, इनको मित्र बना लेंगे, तो ये तत्व जो है हमारी मृत्यु का कारण, हमारी अशांति दुख देने का कारण नहीं बनेंगे। चाहे जितना भी अर्थक्वेक आएगी, भूचाल आएगा, जमीन हिलेगी, लाखों लोग मर जाएंगे, लेकिन ये तत्व हमारा बाल बांका नहीं कर सकते। अगर धरती का विशेष गुण हमने धारण किया होगा, धरती का कौन सा एक विशेष गुण, धरती दाता है, देने वाली है, एक बीज बो दो पेड़ निकल आएगा, हजार बीज पैदा हो जाते हैं, हमेशा देती है धरती, पानी मिलता है, अन्न मिलता है, फल मिलते हैं, सब कुछ धरती माता से मिलता है। ऐसे ही हमारे सम्मुख भी जो आए कभी खाली न जाए, शुभ भावना, शुभ कामना, प्रेम, आदर, सहिष्णुता, उस स्नेह की भावना, प्यार के बोल, हर कुछ हमसे हरेक ले करके जाए, खाली हाथ न जाए, तो क्या होगा, धरती की तरह हम अगर सहनशील बन जाएंगे, धरती की तरह दाता बन जाएंगे, तो जितना भी भूचाल कुछ आएगा धरती हमें दुख नहीं दे सकती। ऐसी जल का क्या गुण है, जल का गुण है एडजस्टमेंट। जल को गिलास में लो, गिलास में सेट हो जाएगा, कटोरी में लो, कटोरी में हो जाएगा, थाली में लो, थाली जैसा रूप धारण कर लेगा, चम्मच लो, चम्मच में आ जाएगा। ऐसे ही हमारा स्वभाव भी ऐसा हो, हम हर आत्मा के साथ एडजस्ट होकर चल सके। ये न कहे कि इनके साथ तो सेट होना आसान है, इनके साथ मुश्किल है, नहीं है। अगर ये हम में एडजस्टमेंट का गुण आ गया हर आत्मा के साथ मिलके, बाबा में यही गुण था, साकार बाबा से जो भी मिलता था सबको लगता था बाबा मेरा है। बूढ़ा मिलेगा, बूढ़े को लगेगा बाबा हमारा हमजिंस है। जवान से मिलेगा, वाह बाबा हमारा जैसा है। जवान के साथ जवान, बूढ़े के साथ बूढ़ा, बच्चों के साथ बच्चा, उनके साथ हरेक को लगता था बाबा मेरा है। ऐसे ही हमारे द्वारा भी हरेक को ये अनुभव होना चाहिए, ये भाई ये बहन मेरे हैं। जितना ये मुझे प्यार करते हैं उतना और किसी को प्यार नहीं करते। तो ये जल का गुण है, और इस कारण से अगर जल का ये गुण हमने धारण कर लिया तो क्या होगा, जल कभी भी हमारी मृत्यु का कारण, दुख देने का कारण नहीं बनेगा। चाहे जितनी सुनामी आ जाए, भूचाल आ जाए, चाहे जितना फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो, लेकिन बाबा ने कहा है ना, कुछ भी विनाश चारों तरफ होगा लेकिन बाबा के घर जो है, अभी दो तीन दिन पहले साकार मुरली में भी आया था ना, अव्यक्त मुरली में भी, बाबा के घर जो है उसको बाल बांका भी नहीं हो सकता, बाबा के बच्चों का बाल बांका नहीं, अगर हमारी बुद्धि बाबा के साथ लगी हुई रहे। तो ये जल का ऐसे, वायु का क्या गुण है, हल्कापन। वायु हर चीज को उड़ा के ले जाती है। ऐसे हमें कभी भी कोई पेपर, कोई परिस्थिति भारी ना करे। कभी भारी हो जाते हैं, खाने को दिल नहीं, बात करने का दिल नहीं, किसी के प्रति ईर्ष्या है, घृणा है, कोई भी चीज हमें भारी कर देती है, भारी चीज नीचे आती है, हल्की चीज ऊपर उड़ती है। गीत भी है ना अपना, उड़ते रहो और उड़ाते रहो। बस वायु हर चीज को उड़ाती है। ऐसे ही वायु की तरह अगर हमने हल्कापन का गुण धारण कर लिया होगा, जीवन में कभी भारी नहीं होंगे परिस्थितियों के या पेपर के कारण, तो क्या होगा, जितना साइक्लोन आएगा, हवा चलेगी, पेड़ उखड़ जाएंगे, मकान, लेकिन हमारा बाल बांका नहीं हो सकता, क्योंकि वायु तत्व को हमने अपना मित्र बना लिया। और मित्र कभी भी मित्र की जान नहीं लेता, मित्र हमेशा मित्र की संकट के समय रक्षा करता है। इसी तरह पृथ्वी, आकाश का क्या गुण है, आकाश का गुण है आकाश विशाल है। आज आकाश के गुण के कारण ही हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, मोबाइल पर बात कर सकते हैं, टीवी का एक दृश्य दुनिया के एक कोने में होगा यहाँ देख सकते हैं, टेलीफोन से बात कर सकते हैं, कुछ भी, क्योंकि आकाश के अंदर इतने सैटेलाइट वैज्ञानिकों ने छोड़े हुए हैं, जहां पर हम बोलते हैं कोई भी दृश्य होता जाता है और लौट करके दुनिया के हर कोने में वो जा सकता है। ऐसी आकाश की तरह अगर हमने विशालता धारण की होगी, हमारे हृदय के अंदर किसी का भी हम अवगुण अपने चित्त में न रखें। इसीलिए बाबा कहते हैं महावीर जो महान आत्माएं होती हैं, उनका एक विशेष गुण होता है, कौन सा, क्षमा का। किसी की भी बात को हम दिल में न रखें, कमी कमजोरी को, इसने मेरे साथ ऐसा किया, बदले लेने की भावना, नीचा दिखाने की भावना, ये न हो। क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा ना वो क्षमा नहीं कर पाएगा। अगर आज हमारे मन में भी किसी के लिए कुछ है कि किसी की कोई बात अभी तक हमने दिल में रखी हुई है, इसका मतलब हम महावीर नहीं है। बाबा कहते हैं कायर हैं, कमजोर हैं। आज से हम उस बात को वो भुला करके उस आत्मा को भी मित्र बनाने का प्रयास करें, उनको फोन करें, उनको मिल करके पुरानी बात को भूल करके उन आत्माओं के साथ हम नया जीवन शुरू करें। यह क्षमा का गुण, आकाश का, विशालता का। बाबा में, बड़ी दादी जी में हमने देखा, कुछ भी बात हो जाती थी दादी अगले पल याद ही नहीं करते थे। एक ये है। और पांचवा तत्व कौन सा है, सूर्य, अग्नि, जिसे बाबा आज भी याद करता है, किस रूप में, ज्वालामुखी योग के रूप में। तो योग हमारा इतना पावरफुल हो, शक्तिशाली हो। अग्नि का विशेष गुण क्या होता है? अग्नि का विशेष गुण यह होता है उसमें जो भी चीज डालो उसका रूप परिवर्तन हो जाता है। तो बाबा ने कहा आपकी भी योग अग्नि, योग ज्वाला ऐसी जली हुई हो व्यक्तियों का रूप परिवर्तन हो जाए, रोती हुई आत्मा आए हंसती हुई जाए, अशांत आत्मा आए शांति के सागर में लहराती हुई चली जाए, और दुखी आत्मा आए सुख का अनुभव करके जाए। ये उसका रूप परिवर्तन तब होगा जब हमारा अपना योग ज्वालामुखी योग होगा। ज्वालामुखी यानी ज्वाला की तरह, और जब हमारा ज्वाला स्वरूप योग हो जाएगा तो सारा संसार ही बदल जाएगा। तो अभी बाबा यही चाहता है हम बच्चों से, इन पांच तत्वों को भी हम योगदान करके इतना पवित्र बना दें, उन तत्वों के साथ अपनी आत्मा के संस्कारों को, अपने गुणों को मिलाते चलें। ये तो मैंने तो एक एक गुण बताया, हर तत्व के 8-10, 10-12 गुण हैं। एक एक देखते चलो, पानी का गुण शीतलता का है, ताजगी देने का है, पानी आगे बढ़ता है हमेशा, पानी जब रुक जाता है उसमें कीटाणु पैदा हो जाते हैं, मक्खी मच्छर, ये सारे अनेकानेक एक एक तत्व के गुण हैं। हम एक एक तत्व के गुणों को देखते चलें, अपने साथ मिलाते चलें, तो फिर वो दिन दूर नहीं जब बाबा के समान हम सब भी कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करके बाबा के साथ साथ गेट खोलने के निमित्त बनेंगे और फिर नई दुनिया में साथ साथ आके राज्य करेंगे। ओम शांति, ओम शांति।